यहाँ पे अब छठा पारा शुरू होता है। चंद चीज़ें हम इसमें से देखेंगे शुरू में इंशाअल्लाह ताला। सूरत निसा के शुरू से हम लोग हकूक की बात देख रहे हैं, उसके बाद हमने अतीउल्लाह और अती रसूल की बात देखी। अब जिस आयत से ये पारा शुरू होता है वो बड़ी काबिले गौर आयत है, आइए देखते हैं। आयत नंबर 148, पारा नंबर 6। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक हासिल है, लेकिन अगर तुम जाहिर और बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। एक खूबसूरत अदब से पारा शुरू होता है, और वो क्या है कि ईमान वाला बदजुबान नहीं होता। हकीकत यह है कि इंसानों की इस दुनिया में रहते हुए हमें कई दफ़ा दूसरों से तकलीफ पहुंचती है। कभी लोग हमारा हक नहीं देते, कभी लोग हम जो उनसे सोच रहे होते हैं वो नहीं देते, और बाज़ दफ़ा तो लोग जुल्म भी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक सबक सिखा दिया कि बुराइयों का चर्चा ना करो। बुराई ट्रैश है, गंदगी है, उसको डंप कर दो। जब भी कभी किसी इंसान से आपको दुख पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे, कोई परेशानी पहुंचे, इस आयत को याद कर लीजिए कि अगर मैंने उसकी बुराई कर दी तो मैंने बदला ले लिया। रिवायत में आता है कि अगर किसी ने किसी के जुल्म के जवाब में उसको बद्दुआ दे दी तो उसने उसका बदला ले लिया। एक तरफ यह है कि आप सब्र करें और क़यामत के दिन की मुश्किलों से बचें, और एक तरफ यह कि दुनिया में अपने बदले ले लें, क्या उनसे बेहतर है? ये बदला कौन नहीं लेता जिसका अकीदा आखिरत मजबूत होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक मौके पर किसी मुनाफिक ने उनको बुरा भला कहा। अब आप सोचिए, अबू बकर जैसे शख्स को भी लोग बुरा भला कहते हैं तो हमें तो कहना ही चाहिए उनको। अबू बकर मुस्कुराते रहे, अल्लाह के नबी सल्लम भी वहां खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आ गया कि उस शख्स ने कोई ऐसी बुरी बात कह दी कि अबू बकर सिद्दीक काबू ना पा सके खुद पर, जुबान खोली। जो ही उन्होंने जुबान खोली, अल्लाह के नबी वहां से नागवारी के एहसास से चले गए। अब अबू बकर को फिक्र पड़ गई अपनी, क्यों नबी सल्लम नाराज हो गए, पता नहीं क्या होगा, मेरे तो ईमान की फिक्र पड़ गई। उनके पीछे गए, अल्लाह के नबी क्या हुआ, जब तक मुझे गालियां पड़ती रहीं आप मुस्कुराते रहे, जो ही मैं बोला तो आप नाराज होके चले गए। फरमाया, अबू बकर, जब वो तुझे गाली दे रहा था और तू खामोश था, तो मैंने देखा कि अल्लाह ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा, वो तेरे बदले में उसको गाली दे रहा था। तो जाहिर है कि फरिश्ते की तो उसको लगेगी, लेकिन जब तूने जुबान खोली तो उस फरिश्ते की जगह शैतान आ गया, और जहां शैतान होता है वहां अल्लाह का नबी नहीं रहता। क्या मतलब था? क्या डर है कि तुमसे भी ज्यादती हो जाएगी? तो याद रखिए, थोड़ा सा सब्र बहुत मीठा फल लाता है। थोड़ी देर सब्र करके देखिए और अपनी जात को छोटा रखें। अबू बकर सिद्दीक के अलावा हजरत अबू हुरैरा से किसी ने कहा कि अबू हुरैरा, फलां शख्स आपको बुरा भला कह रहा था। कहा, अच्छा, इधर आओ, मुझे तो हर वक्त तीन बातों की फिक्र सताती है। पहली बात है, आज तो नेकी कर रहा हूँ, मौत के वक्त पता नहीं क्या कर रहा हूँगा, और दूसरी बात यह है कि मैं जब क़यामत के दिन खड़ा किया जाऊँगा तो मेरा नामे अमाल सीधे हाथ में आएगा या उल्टे में, दाएं या बाएं, और तीसरी बात है कि पुल सरात से आफिया से गुजर जाऊँगा कि नहीं। कहते हैं, अगर मैं इन तीन जगहों से खैर से गुजर गया तो मुझे परवाह कोई नहीं कि लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं कि बुरा। ये बेनियाज़ी लाइए, लोगों की बातों से ऊपर उठ जाएं। सच्ची तौहीद का एक असर आपको अपनी जिंदगी में ये नजर आएगा, आप लोगों की तारीफ और तनकीद से बेनियाज होंगे। और कहते हैं कि अगर मैं इन तीन में से किसी एक जगह पे रोक लिया गया तो दुनिया के हर शख्स को हक पहुंचता है कि वह अबू बकर की बुराई करे। तो याद रखिए, दूसरों की छोटी छोटी बातों पे सीखपा हो जाना, गुस्से में आना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जलती पे तेल डालना, ये एक मोमिन का इखलाक नहीं है। हाँ, अगर कहीं हक लेना है, बस आप कहाँ बात कर सकते हैं, मिसाल है अदालत में किसी के खिलाफ कोई बात करने की जरूरत पड़ी तो सच बोलेंगे, किसी आलिम दीन से कोई मसला पूछ रहे हैं तो उस वक्त अगर आप बात कर रहे हैं तो आप सच बता सकते हैं कि भाई मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, मेरे शोहर ने ये किया, मेरे माँ बाप ने, या जिसने भी किया। लेकिन ये दोस्तों में बैठ के बातें करने की नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसी चीज़ों से बचा के रखे। फिर इसके बाद एक आयत जो आ रही है अगली, ये नबी सल्लम की शान के आगे बहुत ही खूबसूरत है, और वो क्या है, आइए देखते हैं। आयत 150, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाही व रसूलिही व युरीदून अन युफर्रिकू बैन अल्लाही व रसूलिही व यकूलून, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा तैयार कर रखी है जो इन्हें जलीलो ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और इनके दरमियान तफरीक ना करें, इनको हम जरूर इनके अजर अता करेंगे और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। वहदत अदियान का नाम आपने सुना होगा, उसकी जड़ काट दी से एकायत ने। आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं। इनकार हदीस का फितना आपने नाम सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, यजना कह लो, सब एक ही तो है तो वो एक ही है, तो वो एक ही मस्जिद मंदिर हकड़ो नूर, ये सारी जुमले आपने सुने होंगे। ऐसी आयतों के अंदर जो बात बयान की जाती है उससे खुलासा क्या है कि जब तक नबी की हैसियत दीन में मुतय्यन नहीं होगी, किसी को नहीं पता कि असल दीन क्या है। बस आप देखिए कि आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे, किसने बताया, कितनी पढ़नी, कितनी रकतें, एक रुकू, दो सजदे, किसने बताया, नबी सल्लम ने बताया, कुरान में तो कहीं नमाज का तरीका नहीं। कहते हैं हदीसों को अलग कर दो, नहीं, हम नहीं मानते हदीसों को, हदीसें पता नहीं क्या होती हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हदीस ऐसी जैसे इस बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को गिराएं सिर्फ ये ईंटों और लकड़ियों का ढेर रह जाएगा, स्केल्टन, एक पूरा ढांचा है दीन का, सीरत, सुन्नत, हदीस। जो लोग नबी सल्लम को नहीं मानते या मानते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते या अपनी मर्जी की बातों को मानते हैं, वो असल में दीन का ढांचा बदलना चाहते हैं। क्यों? हदीसों को अलग कर दो, अब उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा, हाँ जी हम सलात कर रहे हैं, कैसे, कोई आग के सामने खड़ा सलात कर रहा है जी, ये हमारी सलात है, कोई किसी सलीब के सामने जाके हाथ टेक रहा है जी, ये हमारी इबादत है, कोई क्राइटेरियन नहीं रह जाता। तो याद रखिए आज के दौर का बहुत बड़ा फितना इनकार हदीस का फितना है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इससे बचा के रखे। दीन इलाही का नाम आपने सुना होगा, शहनशाह अकबर के दौर में ये फितना सबसे पहले उठा था। 1,000 साल हो चुके थे तब तक नबी सल्लम को दुनिया से गए हुए, उस वक़्त उसके इर्द गिर्द के कुछ जो दीनदार लोग थे उन्होंने उसके कान भरे और अल्लाह नोज़ दी बेस्ट उसकी क्या मजबूरी थी, उसने एक ऐसा दीन का वर्जन पेश कर दिया जिसमें शराब हलाल, सुअर का गोश्त हलाल, और उसने कहा कि दीन सारा बस 1,000 साल के लिए आया था वो ख़त्म हो गया, आप मुझे सजदा करो, मैं हूँ खुदा, आप पढ़ के देखिए किताबों में क्या कुछ लिखा है, और हर दौर में ये चीज़ें आगे आती जाएंगी। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना है तो कुरान और सुन्नत से जुड़ जाओ। याद रखिए जब तक आपको, मुझे और हमारी नस्लों को इस कुरान और हदीस का नहीं पता होगा, आने वाले फितनों को हम पहचान ही नहीं सकते। और अब तो दिन ब दिन ये फितने सोशल मीडिया के जरिए और खूबसूरत चेहरों के जरिए सामने लाए जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं क्या कह रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको इल्म हासिल करना है, इंशाल्लाह जब इल्म हासिल करेंगे अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल देगा। ऐ नबी, अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा करते हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर इन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा से कर चुके, इससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को ऐलानिया दिखा दो, और इस सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली निशानियां देख चुके थे, इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया, हमने मूसा को शरीक फरमान अता किया और इन लोगों पर तूर को उठाकर इनसे इस फरमान की इताअत का अहद लिया, हमने इनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो, हमने इनसे कहा कि सब्त का कानून न तोड़ो, और इस पर इनसे पुख्ता अहद लिया, आखिरकार इनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और कई पैगंबरों को नाहक कत्ल किया और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं, हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर ये अपने कुफर में इतने बड़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया। देखिए खुद अपना इकरार जुर्म इनका सामने आता है और कोई ये जुरत कर नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह से दूर ना हो, हालांकि फिल वाकई उन्होंने इनको कत्ल ना किया, ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए शुबे वाला कर दिया गया और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुबतला हैं, इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, महज गुमान ही की पैरवी है, उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया। याद रखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। क्या बल्कि अल्लाह ने इनको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, और अहले किताब में कोई ऐसा ना होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आएगा, और कयामत के रोज वो इन पर गवाही देगा। गरज इन यहूदियों के इसी ज़ालिमाना रवैये की बिना पर, और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे इनको मना किया गया, और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें इनके लिए हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल थी, और जो लोग इनमें से काफिर हैं इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर इनमें से जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल की गई है, और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, और इसी तरह के ईमान लाने वाले और नमाज ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम ज़रूर अजरे अजीम अता करेंगे। इन आयत में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं जो ज़रूरी हैं थोड़ी सी बात करना। पहली बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप सोचिए ज़रा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, यकीन आता है सोच के? आप अपनी ज़िंदगी के पिछले 10 साल सोचिए। आप कहते हैं मैं उस वक्त पाकिस्तान में थी, फिर मैं फ्रांस में आ गई। उससे पिछले 10 साल सोचिए, आप कहेंगे हाँ शहर में थी, उससे पहले गांव में थी। यानी हम जब थोड़ा सा पीछे सोचते हैं 10, 15, 20, 25, 30 साल तक कम सोच लेते हैं, उससे पीछे तो हमारा दिमाग ही नहीं जाता ना, याद ही नहीं, बहुत बचपन की को बात याद आ जाए। हजरत ईसा कब से जिंदा है? अल्लाह ताला ने उनको पूरे जिस्म के साथ, वजूद और रूह के साथ आसमानों पे बुलाया, कितनी बड़ी कुदरत है। और आप नॉन मुस्लिम स्पेशली क्रिश्चियंस को ये पॉइंट बताया करें कि हम हज़रत ईसा से मोहब्बत करते हैं और वो जिंदा है और वो दुनिया में आएंगे। 100 से ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं तवातर के दर्जे की कि हज़रत ईसा वापस आएंगे। और आप देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे करते क्या होंगे, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अल्लाह को पता है। आप ये देखिए कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। हम कहते हैं अब 70 साल के हो गए, अब तो मरना ही है, अब 80 साल की हो गई अम्मा, अब इनको दुनिया से जाना है। अल्लाह कहता नहीं मैं 2100 साल का रख के ईसा को जिंदा रखूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 साल की ज़िंदगी दी, तो पहली चीज़ तो हज़रत ईसा से मोहब्बत को महसूस करने वाली थी इस हिस्से में। दूसरी बात देखिए, वाहज़िह मुर्रिबा, तीसरा मुकाम है कुरान पाक में जहाँ सूद की बात आ रही। और अगर आप सुन रहे थे तो यहाँ जो आयतें आई हैं ये यहूद के तनाजुर में आई हैं। इन आयतों से हमें खबर मिल जाती है कि जिस तरह इस्लाम में सूद हराम है, इसी तरह तौरात में भी सूद हराम था, ज्यूज़ को मना किया गया। और आप पढ़ेंगे जब तफसील से इंशाल्लाह ये आयतें, तो हैरानगी होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश क्यों की थी इस गिरोह ने, क्योंकि उन्होंने उन पर तनकीद की थी कि तुम बैतल मकदस में बैठकर सूद का लेन देन करते हो, तुमने अल्लाह के घर को चोरों का भट बना दिया। तो याद रखिए कि ये ऐसी कबाहत है, हर मजहब में ये हराम थी लेकिन आज खून की तरह जिस्म में दौड़ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 36 गुना, 36, और उसमें सबसे हल्का ये है कि कोई अपनी माँ के साथ जिना करे। ये इतनी बड़ी कबाहत है। आपने फरमाया लान अल्लाहु, अल्लाह ने लानत की सूद के मामले में, कैसे? आकिलुहु व मोकिलुहु, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, कातिबुहु व शाहिदुहु, इसको लिखने वाला और इसकी गवाही देने वाला, 4 लोगों के नाम लेकर दिया हुआ है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इस कबाहत से बचा के रखे, क्योंकि इंसानी मामलात में सबसे गंभीर और काबिले सजा जुर्म सूद का जुर्म है। और आज सच बताऊं, इंसानियत का जो सुख और चैन खत्म हुआ है वो इस सिस्टम की वजह से, ना चाहते हुए भी एक घन चक्कर बनकर लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। इसके लिए हम मुस्लिम्स को ना सिर्फ ये कि दुआएं करनी है बल्कि प्रैक्टिकली उठने की ज़रूरत है। अपना खूबसूरत दीन दिखाइए। इस्लामिक इकोनॉमिक्स इतनी भरपूर और इतनी कंप्लीट है, आज अगर मुसलमानों को इकोनॉमिकली आगे लाकर पेश किया जाए कि लाइए आप सिस्टम पूरी दुनिया का बनाएं, ये पूरी दुनिया की क्राइसिस ख़त्म हो जाए। कभी एक नोट गिरता है, एक बढ़ता है, एक करेंसी गिर गई, दूसरी कम हो गई, उसकी वजह ये कि लोगों को संभालना नहीं आ रहा। हज़रत उमर फारूक का दौर, जिनकी हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आप पता कि उनके दौर में हाल ये हो गया था कि कोई गरीब नहीं था, लोग ज़कात का माल ले लेकर फिरते थे और कहते थे कि इसको कहाँ दें। वजह क्या थी कि उन्होंने इस्लामिक लॉज रखे हुए थे माली मामलात के। एक और खलीफा का दौर था और उसके पास लोग आए, कहा कि हमें लोगों का इतना ज़कात का माल जमा हुआ है। कहा जाओ बांट दो। कहा किधर बांटे, किसी को ज़रूरत नहीं। कहा गरीबों को दे दो। कहा गरीब कोई नहीं मुल्क में। कहा जाओ बेवाओं को दे। कहा उनके पास बहुत है। कहा जेलों में दे दो, कुछ भी नहीं। जहाँ वो कह रहे हैं दे दो नहीं, कहते अच्छा जाओ इसका दाना खरीद के पहाड़ों पर परिंदों को डाल दो, फिर हम क्या करें इस पैसे का। ये जिंदा किरदार थे। आज हम मुसलमानों को वो नुस्खे मालूम है, लेकिन हमने इसको खुद नहीं अपनाया, दूसरों को कहाँ देंगे। तो आज की इंसानियत पे ये रहम होगा मुसलमानों का। आप देखिए कि अल्लाह ने अरबों के जरिए लोगों को तिब दी, जराही मुसलमानों से हुई, यानी बड़े बड़े कारनामे माजी में मुसलमानों से हुए। ये जितनी इस वक्त साइंसी तरक्की हुई है, इसकी बेस में हर जगह कोई ना कोई मुसलमान था। अलजेब्रा आप देखिए अरबिक लफ्ज़ है, इसी तरह इल्मे जराही। और आप देखिए कि ये बड़े बड़े जो नाम आप लोगों ने कभी किताबों में पढ़े ही होंगे, कि जो सब मुसलमान थे, अब हम सोए हुए हैं। ये 400 साल हो गए मुसलमानों को सोए हुए, 1000 से लेके 1400 का ये जो सेंचुरीज हैं, अब सोए। लेकिन अब हम जाग भी रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। हम रात जिस मस्जिद में थे, इतने यंग, इतनी यंग बच्चियां और यंग ब्रदर्स थे मस्जिद में कि जगह नहीं थी। तो वहां खड़ी मैं अपनी जो सिस्टर थी साथ, उनके साथ यही बात कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिएगा चेंज हमारी यूथ ने लेकर आना है। लेकिन उनका मेरे से एक ही सवाल था कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ऐसे क्यों नहीं, या मुसलमान औरतों के लिए मस्जिदों में उस तरह जगह क्यों नहीं, हम क्यों नहीं एक्टिव। और हम थोड़ी देर खड़े वहां देख रहे थे, जैसे हरम में ऐसे टोलियों की टोलियां आती हैं ना इस। और ये चीज मैंने पिछले 15 साल अमेरिका में देखी है, हर मस्जिद भरी हुई है, औरतें मर्द बच्चे पूरी फैमिली, मगरिब और इशा दो नमाजें। मोस्टली लोग ह्यूस्टन में जब वो मस्जिद में पढ़ते हैं, बच्चों को आदत है, फैमिली नाइट्स हो रही हैं, औरतें बराबर एक्टिवेटेड है मस्जिद में। अब यूरोप में मैंने ये चीज़ बहुत मिस की है, बहुत कम। मर्द जाते होंगे, औरतों का रुझान कम है। और जिस मस्जिद में औरतें जाएंगी वो या अरब मस्जिद होगी या सोमाली या अफ्रीकी मस्जिद होगी। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि अब हमारी यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर ये चीज़ आ रही है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस्लाम की जो खूबियाँ वो हमारे जरिए से लोगों तक पहुँचा दे। फिर इसके बाद आयत नंबर 163, इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहिन वन नबीयीना मिन बादिही। ए नबी, हमने आपकी तरफ इस तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद के पैगम्बरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरह वही भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी। हमने इन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और इन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। यानी कुरान पाक में 25 नबियों का जिक्र है, इसके अलावा भी नबी मौजूद थे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दौर में जो नबी रखे उनकी बात की जा रही है। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए, ताकि इनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे। और अल्लाह बहरहार गालिब रहने वाला और हकीम व दाना है। क्या पता चला कि हर नबी का पैगाम एक था, नबी एक ही सिलसिले की कड़ी के लोग थे। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि नबी जो कुछ इसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं। अगरचे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफायत करता है, जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक से दूर चले गए। इस तरह जिन लोगों ने कुफर और बगावत का तरीका इख्तियार किया और जुल्म और सितम पर उतर आए, अल्लाह इनको हरगिज माफ ना करेगा, और इन्हें कोई रास्ता सिवाय जहन्नुम के रास्ते के सिवा न दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। दुआ कीजिए अल्लाह सबको जहन्नुम से बचा दे। अल्लाह जिरना मिनन्नार। जरा सी गर्मी होती है जान पे बन जाती है ना, सांस घुट रहा है, हवा बंद हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है। जरा सोचिए जहन्नुम की आग कितनी शदीद होगी। अल्लाह ताला सबको बचाए। बड़ी प्यारी आगे आयत आ रही है, ऐसे लगता है कि जैसे मुसलमानों को अल्लाह ताला एक खूबसूरत सी खबर देते हैं। और वो क्या, या अय्युहन्ना सुकद जाकुमुर रसूलु बिल हक्की मिर रब्बिकुम फामिनू खैरल लकुम। लोगो, ये रसूल तुम्हारे पास रब की तरफ से हक लेकर आ गया है, ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। देखिए कितना प्यार है इसे एक दावत में। और या यूहन्ना से क्या पता चलता है, सारे लोग आप और मैं इस कुरान को पढ़ रहे हैं, आप में से कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है इस वक्त, तो या अय्युहन नास कौन है फिर? उनको कौन बताएगा आयतें? हम बताएंगे। ये कुरान इंसानियत के नाम रब का पैगाम है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो हमें दूसरों तक कब पहुंचाना है? जब हमें खुद समझ आएगा, हम खुद इस पे अमल करेंगे। का ईमान ले आओ, कितना प्यार है। और वाकई फिर इस दावत पे ये लब्बाई कहने को दिल भी करता है। और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। ए अल्लाह, हमारे जरिए से किसी का दिल खोल दे। रात को जिस मस्जिद में थे वहाँ एक शख्स कन्वर्ट भी हुआ, उसने शहादा दी, कलमा पढ़ा। दिल की गहराई से खुशी होती है कि अल्लाह लोगों को जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा ले। अब कुछ चीज़ें आगे हम देखेंगे जिसकी वजह से अहले किताब में बिगाड़ आया। उसमें एक चीज़ क्या थी? नबियों के रुतबे को घटाना या बढ़ाना, और अल्लाह के दिए हुए दीन को या तो सख्त कर लेना या बहुत ढीला छोड़ना। इसको गलूफ कहते हैं। आइए देखते हैं। या अहले किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक। ए अहले किताब, अपने दीन में गलूफ ना किया करो और अल्लाह की तरफ से हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करो। मसीह ईसा इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं थे कि वो अल्लाह के एक रसूल थे और इसका फरमान थे, यानी उसके कलमे कुन से पैदा हुए जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। वो एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन है, यानी ट्रिनिटी, तीन खुदाओं का नजरिया बातिल है। बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही हक में बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि कोई इसका बेटा हो। जमीन और आसमान की सारी चीजें इसकी मिल्क हैं, और इनकी किफालत और खबरगिरी करने के लिए बस वही काफी है। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा, यानी बुरा नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकबर करता है, तो फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। इस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से इनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकबर किया, इनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, इनमें से किसी को भी वहां ना पाएंगे। क्या पता चला कि बंदगी से आर नहीं करना। हजरत ईसा, जिनका नाम लेकर आज लोग उनको खुदा कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वो तो खुद अल्लाह के आगे झुकने वाले थे। पता नहीं आसमानों पे सजदे करते रहते होंगे, झुकते रहते होंगे, क्या करते रहते होंगे। तो इस हिस्से में मेरे आपके लिए अमल क्या था? किसी जगह भी अल्लाह के आगे झुकने से बुरा ना महसूस करें। बाज़ लोग कहते हैं यहाँ नमाज पढ़ो, हाय अब इस हाल में नमाज पढ़ूँ, अब इस हुलिये में नमाज पढ़ूँ। नहीं, ये बंदगी से आ रहा है। अल्लाह का ये हक बनता है कि बंदा उसके साथ अपना मामला हर जगह सही रखे, और कभी भी किसी नेकी को अपने लिए हल्का ना समझे। क्योंकि मैं अब ये काम करूं, हर एक कर सकता है। बड़ी प्यारी आयत है, या यूहन्ना सुकद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ गई। कौन सी है ये? अपने कुरान को छुए, प्यार करें इससे, मोहब्बत करें। ये है असल में रोशन दलील, ये एक टॉर्च है। आप देखिए, कुरान एक टॉर्च का काम करता है, अंधेरे में रोशनी का काम करता है। ये कुरान का नूर है जो जिंदगी में रोशनी ले आता है, जो अपने गुनाह और सवाब का फर्क बताता है। और साथी का फाम मल्लजीना आमनू, और हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, कहें अल्लाह हमें अपनी बात मानने वालों में शामिल कर ले। अल्लाह हम तेरी बात मानेंगे। देखिए, आमनू क्या है? मान गए, जो कहते हो अल्लाह जी मैं मानती हूँ। पीछे भी देखिए, पारे के एंड पे निफाक से बचने के जो रास्ते थे उसी में इधर भी हैं। आमनु बिल्लाही वा तसमु बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फदलिन। इससे क्या पता चलता है? हमेशा वापसी का रास्ता खुला रहता है। अल्लाह ने कभी किसी बंदे की जिंदगी में तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कुफर करें, निफाक करें, शिर्क करें, बिदत करें, कबायर का इर्तकाब करें, हराम लें, हलाल को छोड़ दें, हर लम्हे इस बात का पूरा मौका मौजूद है कि वापस आ जाओ। टेक अ यू टर्न, तौबा क्या, टेक अ यू टर्न। जिंदगी के सफर में जरा सा फील हो कि मैं गलत रास्ते पे चली गई थी, कभी ख्वाहिशों के नाम पे, कभी रस्म और रिवाज के नाम पे, पलट आइए। अल्लाह कहते हैं आ जाओ। कैसे? अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और इसकी पनाह ढूंढेंगे, मांगिए अल्लाह से, अल्लाह तला की पनाह में आए। आप देखिए बच्चा जहां सारा दिन भागता रहे, जब सोना होता है ना तो माँ को ढूंढता है, खाना होता है तो माँ को ढूंढता है। अल्लाह तआला के लिए कोई निस्बत नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला के दामने रहमत में पनाह लेकर इंसानियत को सुकून मिलेगा। और क्या करेगा अल्लाह उनके साथ? इनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता इनको दिखाएगा। वो है मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम, यानी जो रास्ता ढूंढता है उसको अल्लाह जरूर देता है। आप किसी के घर जाना चाहें, क्या वो आपको रास्ता नहीं बताएगा? तो ये इल्जाम है लोगों का अल्लाह पर कि जी अल्लाह जब चाहेगा हिदायत देगा। हम तो कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें देना ही नहीं चाहता। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला वापसी के रास्ते खुले रखता है। तो इतने खूबसूरत पैगाम पे सूरत पूरी होती है। आखिरी जो आयत है ये विरासत से मुतल्लिक है। सूरत के शुरू में हमने विरासत के अहकामात पढ़े थे ना, उसमें से एक हिस्सा सौतेले बहन भाइयों के हिस्से क्या होते हैं उससे मुतल्लिक अब आखिर में आ रहा है। आइए देखते हैं। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ए नबी लोग तुमसे कलाला के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो इस तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हो तो वो तरके में से दो तहाई की हिस्सेदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हो तो औरतों का कहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकामात को वाजे करता है, क्यों? इसको हाईलाइट कीजिए, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटकते फिरो। और वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और अल्लाह को हर चीज का इल्म है। क्या बताया अल्लाह ताला ने आपको मुझे इसमें, जीने के, मरने के, खुशी के, गम के, माल के, विरसे के, विरासत के सारे काम तुम्हें मैंने दे दिए, अब किधर जाओगे? इतने प्यारे कानून को छोड़कर, इतने प्यारे दीन को छोड़कर गैरों की तरफ जाओगे? तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सूरत में हमने जो कुछ पढ़ा, जितनी बातें सीखी, ये अल्लाह ताला हमारे अमल में ढाल दें। कितनी सूरतें हो गई हैं? जब तक गिन सकते हैं गिनते रहेंगे। सूरत फातह बोलिए, फातिहा, अगली अल बकरा, आले इमरान, सारे निसा। फातिहा में क्या मांगा? हिदायत। बकरा में क्या मिला? जालिकल किताब ला रईब फी, इस किताब को खोलो। बनी इसराइल की हिस्ट्री सुना दी। सूरत आले इमरान में क्या बताया? नसारा के अकायद नजरियात। और सूरत निसा में भी क्या पढ़ के आए? घर से बाहर तक का सुकून लेना है तो अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में ले आओ। अब एक खूबसूरत सूरत सूरत अल माईदा के नाम पे आपके मेरे सामने है। कह दीजिए कि सूरत अल अकूत, अहदो पैमान को निभाओ। ये सूरत हकीकत में कमिटमेंट्स निभाने वाली सूरत है। हजरत आयशा का कौल है गालिबन कि यह सूरत नबी सल्लम की जिंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई, लिहाजा इसका कोई हुक्म मनसूख नहीं है। और यहां तक आता है अपने मर्दों को सूरत मायदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरत नूर और सूरत निसा सिखाओ। क्या पता चला कि सूरत मायदा बहुत एनरिच सूरत पढ़ने वाले हम, पूरी शरीयत का एक किस्म का खुलासा है, अहकामात भी हैं इसमें। और इसमें बहुत दफा आपने जो नोट करना है, आप अपने लिए काम नोट करें, इस सूरत के दौरान लफ्ज तकवा का जो लफ्ज आएगा उसको हाईलाइट करें, गिन के बताइएगा। अभी मैं बता दूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, बाद में खुद गिनेंगे तो याद रहेगा। सूरत जब पूरी होगी तो जो बताएगा उसको इंशाल्लाह प्राइज मिल जाएगा। कितनी दफा सूरत में, अब ये ना हो कि पूरी सूरत में सिर्फ तकवा ही ढूंढते रहें। चले ये भी अच्छा है, सूरत में ढूंढेंगे तो फिर जिंदगी में भी ढूंढेंगे। मेरी फेवरेट सूरतों में से एक सूरत है, बिलीव मी, इस सूरत को पढ़ने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको समझा तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई कि अब और किस चीज की जरूरत है इंसान को। इतनी प्यारी ये सूरत है। कुरान पाक का एक बहुत बड़ा पैगाम इस सूरत में। आइए शुरू करते हैं। और मायदा कहते हैं दस्तरखान को, ये क्यों? खाने पीने से सारा दीन है हमारा। तो बहरहाल इसमें एक मायदा के नाम के ख्वान का जिक्र है जो बिल्कुल सूरत के एंड पे आएगा, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उन्होंने भी ये फरमाइश की थी कि जिस तरह बनी इसराइल पर मनोसलवा उतरा था तो हमारे लिए भी कुछ उतरे। तो हमारे लिए क्या उतरे मुसलमानों के लिए? शाम को जाके इफ्तारी पे अपना टेबल देख लीजिए खाने का, हमारे लिए भी कोई मनसलवा से कम तो नहीं है। कितना अल्लाह ने रिस्क दिए, और मुझे लगता है मुसलमान ज्यादा खाते हैं, शायद उनके नसीब में ही ज्यादा है। शायद अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिए कि देखो मेरे हो जाओगे तो खाओगे खूब खूब खाओगे खूब पियोगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इस सारे काम को आसान कर दे। और सूरत मायदा में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि पूरी सूरत तकरीबन 6 मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, और बुनियादी चीज इसमें यही है कि आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर सच्चे दिल से अमल करो, और इसमें तुम्हें जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। आइए शुरू करते हैं।